ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। अविनाशी कमाई करने के सीजन, संगम युग। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता ने हम बच्चों को अपना बनाया, भाग्य को जगाया और भाग्य के सितारे को चमकाने का बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया। और हमारे भाग्य के निर्माण के लिए स्वयं भगवान ने रुद्र महायज्ञ की स्थापना की। उस महायज्ञ में हम तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से जितना स्वाहा होते हैं उतना भाग्य का सितारा स्वतः ही चमकता रहता है। तो जिसका बाप ही सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता है, उसका क्या कहना है। खजानों का सागर बाप, मेरा बाप है। चाहे जितना मैं खजाने लूट सकता हूं और लूटा सकता हूं, तो ऐसा मौका हमें केवल संगम युग में ही मिलता है। जैसे अमृत की सीजन होती है, आम की सीजन होती है, अंगूर की सीजन होती है, खूब उस सीजन में खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये जो संगम युग है, ये सीजन है किसके? हाँ जी, अविनाशी कमाई करने की। विनाशी कमाई तो सारे क्लब में कर सकते हैं, चाहे जितनी कर सकते हैं, लेकिन अविनाशी कमाई जो साथ हमारे चलती है वो अविनाशी कमाई करने का केवल सीजन संगम युग है। इस संगम युग की इतनी महिमा क्यों है? अविनाशी कमाई करने का सीजन इसको क्यों कहते हैं? उसके पांच कारण हैं। पहला कारण, सारे कल्प में परमात्मा अविनाशी बाप हमें अविनाशी कमाई करने के लिए अविनाशी ज्ञान देते हैं। कमाई अविनाशी करने का ज्ञान केवल हमें संगम युग में ही मिलता है। सारे कल्प में ना अविनाशी बाप मिलता है, ना अविनाशी ज्ञान मिलता है। केवल संगम युग में ही अविनाशी बाप हमें अविनाशी ज्ञान देते हैं कैसे अविनाशी कमाई करें। उससे हम जितना चाहे अविनाशी कमाई कर सकते हैं। दुनिया में बुद्धिमान लोग बहुत हैं, एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि भगवान के कार्य में लगती है, भगवान के सेवा में लगती हैं, अविनाशी कमाई करने में लगती हैं, वास्तव में वो बहुत बड़े बुद्धिमान कहलाते हैं। इस संसार में योगी आत्माएं सबसे बुद्धिमान आत्माएं हैं। चाहे किसी ने यूनिवर्सिटी की कितनी भी डिग्रियां ली हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, फिलोसोफर हो, इन सबसे बढ़कर बुद्धिमान आत्माएं हैं योगी आत्माएं। योगी आत्माओं के पास दो कलाएं होती है, वो किसी के पास नहीं होती है। कौन सी कलाएं? पहली कला ये होती है, वो चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे होते हैं। माया दुश्मन के राज में रहकर बड़ी चतुराई से अपने मन और बुद्धि को वो सेफ रखते हैं, दुश्मन उन पर अटैक नहीं कर सकता है। दुश्मन माया उनको धोखा नहीं दे सकती है। हर पल हर संभव वो अपने मन और बुद्धि को दुश्मन के वार से सेफ रखते हैं, इसलिए उनको चतुर सुजान बच्चे कहते हैं। दूसरी कला ये होती है, दुश्मन के राज में रहकर अविनाशी कमाई करने की कला उनके पास होती है। परम धाम में परमात्मा की याद करना, उससे हमें सबसे जास्ती कमाई होती है। वहीं अपने मन और बुद्धि को वो लगाते हैं और हर पल हर घड़ी अविनाशी कमाई करके अपने को माला माल करते हैं। ये अकल, ये सेंस उनके पास होती है। दुनिया वाले विनाशी कमाई करने में बुद्धि लगाते हैं और योगी आत्माएं अविनाशी कमाई करने में बुद्धि लगाते हैं। दूसरी बात है, संगम युग है, शुभ वेला। दुनिया में कहते हैं शुभ वेला, अर्थात हमेशा जो शुभ करता है, शुभ सोचता है, शुभ बोलता है, शुभ कार्य करता है, वो बहुत ही भाग्यशाली कहलाता है। शुभ लाभ, शुभ करने से हमें लाभ होता है, स्वयं को भी होता है और अनेक आत्माओं को लाभ होता है। तो संगम युग ये शुभ वेला है, भाग्य बनाने की वेला है, भाग्य निर्माण का काल है। इसलिए बाबा हमें सिखाते हैं, अविनाशी कमाई करना है तो हमेशा शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ कार्य करते रहो और व्यवहार में उस शुभता को अपनाओ। तीसरी बात है, संगम युग है, सारे कल्प की नींव, फाउंडेशन। ये हॉल है, हारमोनी हॉल है, इसकी नींव बहुत मजबूत है, इसलिए ये हॉल, हारमोनी हॉल बहुत सुंदर लगता है। तो सारे कल्प की नींव है संगम युग। अगर संगम युग में हम अपने भाग्य का निर्माण अच्छी तरह से करते हैं, सारा कल्प हमारा भाग्य चमकता रहता है। तो इस नींव को हमें पावरफुल बनाना है। इमारत कितनी भी सुंदर हो, बिल्डिंग कितनी भी सुंदर हो, लेकिन फाउंडेशन उसका कमजोर हो तो वो इमारत कभी भी गिर सकती है, उस प्रक्रिया का सकती है और कईयों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। चौथी बात है, संगम युग की इतनी महिमा क्यों है? संगम युग का गायन भक्ति मार्ग में अधिक मास के रूप में होता है। लौकिक दुनिया में हर 3 साल के बाद अधिक मास आता है, और जब अधिक मास आता है तो भगत लोग उस मास में बहुत तीर्थ यात्राएं करते हैं, पवित्र रहते हैं, बहुत साधना करते हैं, ताकि सारा साल हमारा बहुत अच्छी तरह से बीतता रहे, ये उनकी भावना होती है। तो ये संगम युग की महिमा है, संगम युग की यादगार है। इस संगम युग में अगर हम बहुत अच्छी तरह से प्रसाद करते हैं तो सारा कल्प हमारा बहुत अच्छी तरह से बीतता रहता है। पांचवी बात है, दुनिया में कहते हैं कुछ न कुछ हुनर सीखो, कुछ कला सीखो, आपका जीवन अच्छा बीत जाएगा। तो बाबा हमें रूहानी हुनर सिखाते हैं, अविनाशी कमाई करने की कला सिखाते हैं, और जिनके पास ये रूहानी हुनर होता है वो अपने भाग्य को बहुत अच्छी तरह से चमकाते रहते हैं। और वो रूहानी युग हुनर संगम युग में ही हम काम में लाते हैं। विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत अच्छा पढ़ता है, अच्छी डिग्री लेता है, तो सारा जीवन भर मौज उड़ाता है, मस्ती में रहता है, अच्छा जॉब मिलता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है। और जो विद्यार्थी विद्यार्थी जीवन में अलबेला रहता है वो सारे जिंदगी भर रोता रहता है, पछताता रहता है, अच्छा होता मैं पढ़ाई पढ़ता तो, वो पढ़ाई मेरे काम में आती। 4 साल 6 साल अच्छी तरह से पढ़ता है, सारा जीवन मौज करता है। खड़े हो जाओ। ए भाई अहमदाबाद से आया है और यम टेक में इसने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया है अहमदाबाद में। बाबा का नाम भी बाला हो गया, उसको अपना जॉब भी अच्छा मिल गया। तो पढ़ाई में जो बहुत दिल से पढ़ते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है, और जो अलबेले होते हैं वो पछताते रहते। अच्छा होता मेरा बाप कहता था, मेरी माँ कहती थी पढ़ो, मैंने नहीं पढ़ा, उस समय थोड़ी सी मौज मस्ती किया, सारा जीवन वो अलबेले रहने से भाग्य नहीं बना सके। इसलिए बाबा ने हमें खुली छुट्टी दी है, जितना मर्जी कमाई करो। एक तरफ तो बाबा ने कहा खूब कमाई करो, कमाई जो शब्द है का आगे क्या है, माई। माई अर्थात माया, माया को कहते हैं बाबा मेरी बच्ची हो तुम और तुम्हें मैं ड्यूटी देता हूं, इसकी कमाई में बाधा डालना ये तुम्हारा काम। बाबा इधर से कहते खूब कमाई करो और माया को कहते इसमें बाधा डालो, इसको कमाई नहीं करने दो, क्योंकि मेरे पास तो केवल 8 सीट है, 108 है, 16,000 है, इतनी सीट तो मेरे पास सत्योक्ते तक में है नहीं, कहां से दूं इतनी आत्माओं को, इसलिए माया को माई को भेजते हैं। किसी न किसी प्रकार का विघ्न परिस्थितियां के रूप में माया आती है और हमें कमाई करने में प्रॉब्लम करती है। हमें माया को ओपन चैलेंज देना है, तुम जितना मर्जी प्रॉब्लम लाओ, मेरे कमाई करने में तुम बाधा नहीं डाल सकती, मैं भी चैलेंज करता हूं, है ना? क्योंकि बाबा ने केवल संगम युग में हमें ये चांस दिया है, इसलिए चांस को हमें छोड़ना नहीं है। मौका एक ही बार मिलता है, क्रिकेट की भाषा में क्या कहते हैं, हाँ राजू भाई, मिले मौका तो बस चौका। बताओ भाई, चौके में खुश है ये? मिले मौका तो मारो छक्का मैक्सिमम, छोड़ने का नहीं मौका, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। तो बाबा हमें रूहानी क्रिकेट सिखाते हैं। 10 खिलाड़ी मैदान में हैं, 5 विकार और 5 तत्व। और हम क्रिकेट खेलते हैं, संकल्प रूपी बॉल भेजते हैं, ये 10 खिलाड़ियों में से कोई अगर रोकता है तो हम आउट हो जाते हैं, और 10 को खिलाड़ियों को चकमा देते हैं और सीधा इस साकारी दुनिया से ऊपर हमारा संकल्प चलता है, अर्थात बाउंड्री के बाहर बॉल जाता है, तो क्या हो गया, चौका, इतनी कमाई हो गई। और संकल्प रूपी बॉल अगर परमधाम जाता है सीधा छक्का, मैक्सिमम कमाई। एक पल मुझे याद करोगे तो अनेक पद्मों की कमाई होगी, ये भगवान के महावाक्य हैं। अनेक पद्मों की कमाई माना अनाप शनाप कमाई, दुनिया में इतनी कमाई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। जितने भी धनवान लोग होते हैं दुनिया में, अखबार में आता है इसकी कमाई एक दिन की इतने अरब डॉलर है, इतने खरब डॉलर हैं, एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक दुनिया में, केवल बाबा के बच्चे। तालियां तो बजाओ भाई, केवल बाबा के बच्चों के पास वो हुनर है, किसी और के पास नहीं है। तो इसलिए ये मौके का हमें पूरा लाभ लेना है। चांस लेने वाले ही चांसलर बनते हैं। अभी अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है, कौन से बातों से हम अविनाशी कमाई कर सकते हैं? बाबा की सेवा से हमारी कमाई होती है और दूसरे बाबा की याद से कमाई होती है। ये दो मेन साधन हमें बाबा ने कमाई करने के लिए दिए हैं, सेवा और सिवा। सेवा, आज मेरा तन अच्छा है, मन अच्छा है, खूब सेवा डट के मुझे करना है। बुढ़ापे में तन भी ठीक नहीं होता है और मन भी ठीक नहीं होता है, मन भी साथ नहीं देता है, तन भी नहीं साथ देता है। लेकिन मैं अभी बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ हूं, इसलिए बाबा की सेवा हमें खूब करना है। हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करना है। ये चांस केवल सत्संगम युग में ही हमें मिलता है। डायरेक्ट भगवान के महायज्ञ की सेवा करने का चांस केवल संगम युग में मिलता है, बाद में तो इनडायरेक्ट चांस मिलता है सेवा करने का। इसलिए ये जो तन मेरा है, बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी स्वाहा करो, हड्डी दधीचि ऋषि की तरह इसको लगाओ, खूब घिसा हड्डियों को, जो चाहे झाड़ू लगाने की सेवा मिले, कुछ भी मिले, छोड़ना नहीं चांस। ये कोई धर्मशाला नहीं है, कोई ये मंदिर नहीं है, ये भगवान का घर है। सेवा का प्रभु प्रसाद मुझे भरपूर खाना है, लेना है चांस। और जो दधीची ऋषि की तरह सेवा करते हैं, भगवान किसी का नहीं रखता है, उनको स्पेशल गिफ्ट मिलती है। कौन से गिफ्ट मिलते है भाई? हाँ जी, जो हड्डी हड्डी सेवा में लगाते हैं उनको स्पेशल गिफ्ट मिलती है, बोलिए ना। हाँ जी, राजा ही संग सतयुग में मिलती है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एवर हेल्दी और एवर हैप्पी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ दुआएं मिलती है। हाँ क्या, जो हड्डियां स्वाहा करते हैं उनको लाइट का शरीर, फरिश्ता स्वरूप का शरीर गिफ्ट के रूप में भगवान दे देता है। फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति उसको बहुत अच्छी होती है। दूसरों को मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और भगवान उनको वरदान के रूप में देता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को, स्थूल शरीर को सेवा में खूब लगाया, तो लाइट का शरीर, दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर गिफ्ट में उनको दे देता है। लो तुम्हारी गिफ्ट, कितनी अच्छी गिफ्ट हमें बाबा देते हैं। जो मन से बहुत सेवा करते हैं उनको सारे कल्प में मानसिक बीमारी कभी भी नहीं आ सकती है, ये गिफ्ट मिलती है सारे कल्प में। क्योंकि संगम युग में उन्होंने अपने शक्तिशाली मन के द्वारा अनेक कमजोर आत्माओं के मन को सकार दिया, सहयोग दिया, शक्तिशाली बनाने में मदद किया। इसलिए मन से भी हमें खूब सेवा करना है, और धन भी, चलो बाबा को याद करते दो मिनट। जो धन से बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं उनको सारे कल्प में विनाशी धन की कभी भी कमी नहीं पड़ती है। भगवान उनको हमेशा भरपूर रखते हैं। तो सेवा करने से हमें बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिलता है। बाबा जो खजानों के सागर हैं, उनसे खजाने लेते रहना और अनेक आत्माओं को खजाने बांटते जाना। हमें क्या मिलता है ये बिजनेस करने से? ये बिजनेस करने से पहला फायदा तो खजाने बढ़ते जाते हमारे, और दूसरा लाभ ये होता है हमें दुआओं की बहुत प्राप्तियां होती है। ये डबल फायदा होता है इसमें। तो विशेष जब हम सेवा करते हैं तो ज्ञान का खजाना दान करने का हमें बहुत गोल्डन चांस मिलता है। जितना चाहे ज्ञान रत्न बांटते रहें, बांटते रहें, तो जो ज्ञान रत्नों का व्यापार बहुत करते हैं उनके पास स्थूल धन का कोई भी कभी कमी नहीं पड़ती है। उसका स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है, मम्मा का। मम्मा बाबा के पास खाली हाथ आई थी, लेकिन मम्मा ने क्या किया, ज्ञान रत्नों का दान बहुत करती रही। जो ज्ञान सागर बाबा की मुरली मम्मा सुनती थी, मनन चिंतन करती थी और अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों से साहूकार बनाती रही। तो जिसने एक कौड़ी यज्ञ में नहीं लाई, वो सारे संसार को धन बांटने वाली धन लक्ष्मी बन गई। भाई बताओ भगवान की पॉलिसी कैसी है? सारा संसार धन मांग रहा है उनसे, धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली पर। तो ये ज्ञान का धन का कनेक्शन वो स्थूल धन से है। जो आत्माएं ज्ञान रत्नों खूब बांटते हैं, खूब दान करते हैं, उनके पास स्थूल धन भरपूर रहता है सारे क्लब में। दूसरा है गुणों का खजाना। जितना हम गुणों का दान करते हैं उतना दिव्य गुणों से हम संपन्न रहते हैं, भरपूर रहते हैं, सजे सजाए रहते हैं। दिव्य गुणों का दान कैसे करेंगे भाई? हाँ जी, दिव्य गुणों का ज्ञान मैं बहुत अच्छा अच्छा दे सकता हूं, मैं बड़े अच्छे अच्छे क्लासेस करा सकता हूं, लेकिन दिव्य गुणों का दान कैसे कर सकते हैं? ज्ञान देने से क्या फायदा? कर्मों से, हाँ, चलन से, हाँ, धारणा से। बहुत अच्छी बात है। हाँ राजू भाई, स्वयं धारणा में उत्पन्न से। दिव्य गुणों को पहले अपने जीवन में धारण करना होगा, चेहरे को दिव्य गुणों के श्रृंगार से श्रृंगारना होगा। चेहरा चलन, चेहरा और चलन से ऑटोमेटिक दिव्य गुण दान हम कर सकते हैं। और जितना दिव्य गुण, क्योंकि ज्ञानियों को हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं, लेकिन ज्ञानियों की सेवा करना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, दिव्य गुणों का दान देकर। आपके पास बहुत अच्छी ज्वेलरी है सोने की, हीरे जवाहर की, तो तिजोरी में रखने से आपको खुशी मिलेगी, लेकिन पहनने से क्या मिलेगा? उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो बाबा ने जो हमें दिव्य गुणों की ज्वेलरी दी है, वो बुद्धि रूपी तिजोरी में हमें केवल रखना नहीं है, उसको पहनना है, फिर कर्म क्षेत्र में जाना है। तो ऑटोमेटिक अनेक आत्माओं को वो दान करते रहेंगे और वो खजाना हमारा बढ़ता जाएगा। क्योंकि लोग अभी ज्ञान सुन सुन के थक चुके हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। जो ज्ञान हम सुनाते हैं वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, प्रमाण देखना चाहते हैं, स्वरूप देखना चाहते हैं। तो उसके लिए धारणा की शक्ति हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ानी होगी, ठीक है ना? तीसरा है शक्तियों का खजाना। सारे संसार को शांति और शक्ति, ये दो ही खजाने चाहिए, और कोई चीज की जरूरत नहीं होती है लोगों को। केवल कहते दो घड़ी की शांति, दो घड़ी की शक्ति चाहिए। अशांत है, बहुत दुखी है, बेचैन है, चिंता में डूबे हुए हैं, कहते दो पल की हमें शांति चाहिए। और शक्ति किस लिए चाहिए? क्योंकि अनेक बंधनों में जकड़े हुए हैं, जंजाल में फंसे हुए हैं, तो बंधनों से निकलने की ताकत शक्ति वो चाहते हैं। मैं निर्बंधन बनूं, हर कोई चाहता है मुझे आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले, बंधन में बंधना कोई नहीं चाहता है। इसके लिए हमें शांति का भी दान देते रहना है और शक्ति का भी दान देते रहना है। जितना दान करते जाएंगे ये शांति शक्ति का खजाना बढ़ता जाएगा, है ना? शांति का दान करने के लिए हमें क्या करना है? शांति सागर बाप के पास बैठना है, परम धाम में बाबा से शांति का सकाश लेना है, किरणा है, और सारे संसार की आत्माओं को शावर करना है, अनेक आत्माओं को शांति का दान करना है। जिनको शांति चाहिए उनको वो मिलती रहेगी और उनके दिल की दुआएं भी हमें प्राप्त होती जाएगी। सूर्य जो है ना ऊपर होता है और सारे संसार को रोशनी देता है, तो ऐसे इस कल्प वृक्ष के हम मास्टर बीज रूप है। बाबा बीज है और हम मास्टर बीज रूप है। तो हमें भी ऊपर रहकर सारे संसार की आत्माओं को सका देना है मास्टर बीज में खड़े होकर, ठीक है ना। और शक्तियों का दान देने के लिए बाबा से योगाभ्यास के द्वारा शक्तियां लेते रहना है, उनको अष्ट शक्तियों के रूप में सारे दिन भर में यूज करते रहना है, और बाद में अनेक आत्माओं को सकास के रूप में मनसा के द्वारा दान करते जाना है। तो ऐसा जितना हम बाबा की सेवा करते जाते हैं हमारी अविनाशी कमाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अविनाशी कमाई दुआओं के रूप में हमें बढ़ती है, खजानों के रूप में बढ़ती है, तो उससे फायदा क्या होता है, है जी? कमाई के मुझे कैसे पता चले मेरी कमाई बढ़ रही है, हाँ जी? खुशी और नशा। कमाई बढ़ने से एक प्राप्ति है, हमेशा खुशी और नशा बढ़ता जाएगा, परसेंटेज उसका बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात है, बहुत अच्छी तरह से कमाई होने से लाइटनेस, हल्केपन की बहुत अच्छी अनुभूति बढ़ती है, और हल्केपन की अनुभूति बढ़ने से योगाभ्यास के बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें ऑटोमेटिक होते रहते हैं। ये दूसरा लाभ। दूसरों को उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिनके पास बहुत नशा खुशी ये दुआएं होती हैं, उनको ये सुंदर गहन अनुभव ऑटोमेटिक होते रहते हैं। ये दूसरा लाभ है। तो हमें क्या करना है, संगम युग में आराम, है जी? संगम युग में आराम, आराम हराम है। सच्चा आराम किसमें है, हाँ जी? आ राम, बाबा को राम बोलते हैं ना, निराकार राम, आ राम। जब राम निराकार बाप हमारी बुद्धि में आ जाता है, बैठ जाता है, उससे हमारा सच्चा आराम अनुभव होता है। वो खटिया तोड़ने से आराम नहीं मिलता है, हाँ? यहां का सोना और सत्युग का सोना, इसका दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। यहां बहुत सोता है तो वहां कम सोना मिलता है, और यहां जो कम सोता है उसको बहुत सोना वहां मिलता है, वहां का महल बड़ा होगा उसका, तो हिसाब है। तो बाबा कहते हैं संगम युग में आराम हराम है। देखो स्टूडेंट्स लाइफ में होता है ना, बच्चे स्टूडेंट्स में पढ़ाई बहुत पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, बाप उनका रिजल्ट देखकर खुश होता है, कहते लो बेटा ये तुम्हारी गिफ्ट, जाओ जम्मू कश्मीर घूम के आओ, अच्छी तरह से मौज करके आओ, अवार्ड देता है। और हमें बाबा क्या करता है, हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ते, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हमें कौन सा अवार्ड मिलता है, लो बच्चे एक के जन्मों की बादशाही, जाओ मौज करो, मस्ती करो, कोई कमाई करने की भी चिंता वहां नहीं है, तालियां तो बजाओ। कमाई करने की भी चिंता नहीं, केवल खाओ पियो मौज करो, नाच रचाओ, घूमते रहो, पिकनिक मनाते रहो। तो सत्युग में है क्या, यही है। 21 जन्मों का अवार्ड हमें बाबा देता है, लेकिन संगम युग में जो मेहनत नहीं करते हैं उनको 21 जन्म क्या करना पड़ता है, दूसरों की सेवा करनी पड़ती है, दास दासी नौकर चाकर बनकर। ये कौन सा सौदा पसंद है आप सुनो, अपने से पूछना, है जी? एक जन्म मेहनत करके 21 जन्म आराम करना, या एक जन्म आराम करके 21 जन्म मेहनत करना, कौन सा सौदा अपने से पूछो, है ना? तो हमें संगम युग में खूब अच्छी तरह से मेहनत करना है, कमाई करना है। और दूसरी कमाई हमें बाबा की याद से होती है। याद, याद को याद ही क्यों कहते भाई, दूसरा शब्द लोगों को मिला ही नहीं। योग को योगी क्यों कहते हैं, दूसरा शब्द लोगों को मिला ही नहीं, कारण क्या बताओ? है जी, योग उल्टा क्या है? गयो। जो योगी होते हैं ना, उनकी आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते हैं, वो चले गए, मैंने बाबा के पास में बैठ जाते हो बुद्धि से। याद उल्टा क्या है? दया। हम जितना बाबा को याद करते हैं, खुद को खजानों से भरपूर करते हैं, माना स्वयं पर दया करते हैं, और याद नहीं करते हैं तो स्वयं पर या दया तो छोड़ो, औरों पर भी नहीं दया कर सकते, खुद पर भी नहीं कर सकते। अभी बाबा कहते हैं, एक सेकंड मुझे याद करोगे तो अनेक कदमों पद्मों की कमाई होती है। ये क्या यह सचमुच सच है? हाँ जी, अगर सच है तो कैसे होता है बताइए। अब बाबा मुरली में कहते हैं, वो तो बात सत्य होगी, सवाल ही नहीं उठता है। होती है ना कमाई की? नहीं होती है, कैसे होती बताओ? एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई, माना बेहिसाब कमाई एक सेकंड में, कैसे होती बताओ तो सही ना। कमाई है गए वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन स्थूल रूप में सूक्ष्म रीति से तो जरूर होती है। देखो कैसे होती है, मैं आपको स्पष्ट करता हूं। जब बाबा को हम याद करते हैं तो हमें क्या मिलता है? शक्तियां, शक्तियां मिलती है ना, शक्तियां बाबा से मिलती है। और जितनी शक्तियां हमारे पास बढ़ती है, उतनी रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर अपनी कर्मेंद्रियों पर बढ़ती है, अनुशासन करने की कला और नियंत्रण करने की कला, ये दो शक्तियां हमारी बढ़ती जाती है। और ये दो शक्तियां जिनके पास होती है, वो परम धाम जाने के बाद सतयुग में आते ही राजा महाराजा के पद को प्राप्त करते हैं। और जैसे उनको राजा महाराजा का स्टेटस मिलता है, उनके पास अनाप शनाप कमाई मिलती है, बेहिसाब प्रॉपर्टी उनको मिलती है, ऊपर से आती ही। क्या सोना, क्या हीरे, क्या मोती, कोई गिनती नहीं, अनगिनत प्रॉपर्टी। और जो संगम युग में बाबा को याद नहीं करते हैं, बाबा से शक्तियां नहीं लेते हैं, और जिनके पास नियंत्रण और अनुशासन करने की शक्ति नहीं होती है, वो परम धाम से आते हैं, आते ही साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, जहां प्रॉपर्टी भी कम होती है। तो अपने से पूछो, जन्म पहला सतयुग में लेते ही इतनी जो प्रॉपर्टी मिलती है, वो कौन देता है, कैसे देता है, किस रूप में देता है? तो जवाब मिलता है, योग के द्वारा अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती है, ये उसका प्रमाण है। समझ में क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं? तो योग से ही अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती है। इसमें हमें लोभी लालची बनना है, दुनिया का लोभ बिना से कमाई में नहीं बनना है, इसमें बनना है। खूब अच्छी तरह से योग में लगे रहे, डटे रहे, मस्ती में मस्त रहे, कमाई 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 कमाई, है ना? लेकिन बाबा के साथ में बुद्धि हमारी जुटी हुई हो, कई बार आपको संकल्प आता होगा कि बाबा परम धाम में पता नहीं कौन से दूर कौन से कोने में, इतना बड़ा विशाल परम धाम है, मैं तो साधारण बाबा का बच्चा हूँ, मैं बाबा को याद तो करती हूँ, याद तो करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी याद बाबा तक पहुँचती है या नहीं। कभी ऐसा संशय मन में आता है भाई? सच सच बताओ, आता है तो बोलो। है जी, हाँ देखो बहन जी सच बोल रहे, आता है भाई, बोलो आता है, सच सच बोलो। हाँ देखो ये भी बोलता है, आता है। बोलो ना, और किसी को आता है डाउट, आता है कभी? मैं ज्ञान में आया तो 3 साल तक मेरे मन में ये डाउट रहता था, उसके कारण योग में मेरी रुचि नहीं होती थी। जब योग में बहन जी बोलती थी, दीदी लाल लाइट में बैठो, मैं चुपचाप भाग के चला जाता था। क्या क्या करेंगे इस लाल लाइट में बैठकर, योग लगते ही नहीं है, और बाबा के पास पहुंचती है याद, पता नहीं है उसको पहुंचती भी है या नहीं। तो क्या करता था मैं, आत्मा समझकर बाबा को याद करता था, परम धाम में बुद्धि को एकाग्र करता था, ये प्रोसेस तो करता था, मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र है परम धाम में, है ना। जब मधुबन में मैं 76 में आया, 1 साल तक उसी अनुसार मैंने अभ्यास किया। फिर हिस्ट्री हॉल में 77 में 3 मार्च को रात को 2 बजे बाबा नीचे गद्दी पर बैठकर आए थे, मैं बाबा के सामने 2 बजे बाबा से मिल रहा था, मधुबन निवासी सब मिल रहे थे, एक तरफ दीदी बैठी थी, एक तरफ दादी जी बैठी थी, प्रकाशमणि दादी जी। तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, फिर दृष्टि देने के बाद में टोली देने के लिए हाथ सामने भी किया, और मैं टोली लेने के लिए हाथ सामने किया, लेकिन बाबा ने टोली न देते हुए हाथ पीछे किया, मैं घबरा गया, तो क्या बात है, मेरे से कौन सी गलती हो गई जो बाबा टोली नहीं दे रहे। फिर बाबा ने दीदी की तरफ देखा, बच्ची इस बच्चे का योग का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। ये 2 महावाक्य का उच्चारण किया, मेरे खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये इतने लंबे समय से मेरे मन में डाउट आता था, मेरी याद बाबा तक पहुंचती या नहीं, उसका मुझे प्रमाण मिल गया। जिसको मैं याद कर रहा हूं वो खुद ही कह रहा है बाबा कि इसका योग का चार्ट है अच्छा और इसका नंबर आगे पांडव में, माना मेरी याद बाबा तक पहुंचती थी। उसके बाद मेरे मन में कभी भी ये संशय नहीं आया, ये सारा संसार जो है ना एक ही सिद्धांत के आधार पर चल रहा है, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो। यहां बैठे हुए अगर हम किसी भी आत्मा के दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं, संकल्प करते हैं, वो संकल्प उस पर ठका करता है। सकारात्मक होगा तो सकारात्मक रीति से होगा, नकारात्मक होगा तो नकारात्मक, उसको दुख पहुंचेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बांधेली जो माताएं होती हैं, उनके पति मारते हैं, बच्चे डांटते हैं, उनकी जो तड़प आने वाली याद मेरे पास पहुंचती है तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मैं ऐसी बांधेली बच्चियों को एक्स्ट्रा सकाश देता हूं, एक्स्ट्रा प्यार देता हूं, और सतयुग में वो ऊंच पद प्राप्त करते हैं। ये बाबा के बोल है। एक स्लोगन कभी भी नहीं बोलना है, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा बढ़ती रहे, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहे, तो उससे क्या होगा, योगाभ्यास में हमें बहुत गहरे अनुभव होते रहेंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए ये संगम युग अविनाशी कमाई करने का युग है, इसमें हमें कमाई में लगे रहना है, डटे रहना है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है मुझे आराम करना है। बाबा जो मेहनत करता है उनको बहुत अच्छी तरह से माला माल करता है। हमें कितने खजाने कितने जमा करने हैं भाई, प्रॉपर्टी अविनाशी कमाई कितनी जमा करने है बताओ, जो दुनिया में होते हैं ना नौकरी बिजनेस करने वाले भाई, मेरे पोते पोते परतो पोते ही उनको मिले, मुझे मिले, वो सोचते हैं और हमको कितनी कमाई करना है भाई। सारे क्लब में मेरे लिए संबंधियों के लिए, प्रजा के लिए, भक्तों के लिए इतने खजाने मैं उनको देता रहूं, बांटता रहूं, इतने अनाप शनाप खजाने मुझे अभी घर जाने के पहले कमाने हैं। ये घर जाने की तैयारी मुझे करना है। भरतू हाथ से भरपूर हाथ मेरे हो, बुद्धि रूपी हाथ भरपूर हो, ऐसा अंतरात्मा को लगे मैंने बाबा से बहुत कुछ खजाने लूट लिए हैं, लुटा लिए हैं, ऐसा अंदर से हमें अनुभव होता रहे। मैं बहुत खुश हूं, मैं बेहद खुश हूं, मेरा बाप सागर है, उस सागर से मैंने बहुत खजाने लूटे, ऐसी अनुभूति हमें हो। तो सागर के बच्चे कौन होंगे? मास्टर सागर होंगे ना कि नहीं? तो हमें बाबा ने मास्टर सागर बनने का गोल्डन चांस दिया है, इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से चंद घड़ियों के लिए योग की सुंदर अनुभूति करेंगे। ठीक है ना भाई? सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ। जग मग रही हूँ। मोज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओ बहुत सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली इस संगम युग में अविनाशी कमाई करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं आत्म ज्योति इस शरीर रूपी मंदिर से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश है। मोज आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। मेरे हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। फरिश्तों के महाराजा विश्व महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में उनके बाजू में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मोह फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। स्नेह सागर की लहरों में बाप बाबा की बाहों के झूले में मैं फरिश्ता झूल रहा हूं, झूलता ही जा रहा हूं, झूलते झूलते बाबा की बाहों में लिपट चुका हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं, परम सुख की अनुभूति हो रही है। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका सदा स्वागत है। जब भक्ति मार्ग में गाते थे त्वमेव माता च पिता, त्वमेव वो वायदा मैं निभाने आया हूं। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो, तो कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो, तो कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं, डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। करते ही जा रही हूं, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति जगमगती हुई आत्म ज्योति दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, बुद्धि बल से उड़ती हुई जा रही हूं, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल हिलाल, दिव्या प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। मेरा स्वीट साइलेंस हो, मेरा मूल वतन हो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा के सुंदर स्वरूप को देख रही हूँ। जी भर के देख रही हूँ, भरपूर आनंद ले रहे हो। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्ति शाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ, आ रही हूँ। और पुनः इस शरीर रूपी मंदिर में आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुके हो। मोह चैतन्य आत्म ज्योति से दिव्यता की रोशनी, शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है। इस वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनके संतान भी उनके जैसे निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु। ओम शांति शांति शांति।